हमें बेसिकली एक ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए, क्योंकि ग्लोबली अगर देखें तो देयर इज अ स्लो डाउन, और इंडिया वन ऑफ द फ्यू प्लेसेस वेयर इकोनॉमिक ग्रोथ इज रियली ऑन एन अपसाइकल. सो इवन दो इंटरेस्ट रेट मतलब पिछले दो साल में 150 बेसिस पॉइंट से कटे हैं कंपेयर टू ग्लोबल इंटरेस्ट रेट, स्टिल काफी ऑन द हायर साइड है. जो कि इंडियन इकोनॉमी है देखे तो जैसे कि आपने बोला ग्रोथ अच्छा खासा चल रहा है, इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में है, और इनफैक्ट जो हमारे प्रीवियस गवर्नर है डॉक्टर रघुराम राजन उनको क्रेडिट देना चाहिए इन्फ्लेशन को रिंग फेंस करने का. इक्विटी मार्केट भी मोमेंटम बढ़ा रही है, लेकिन एक्चुअल जो मैन्युफैक्चरिंग का ग्रोथ है वो नहीं हो रहा है. कंज्यूमर का जो परचेजिंग पावर है वो पिकअप नहीं हो रहा है. अगर आप एरियाज जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर या रियल एस्टेट को देखें, रियल एस्टेट की बात करें तो पिछले कई सालों से दो तीन साल से ज्यादातर एकदम स्टैग्नेंट है, और वो लोग परचेज नहीं कर पा रहे हैं प्रॉपर्टी. तो सिंपली अगर देखें तो ये रेट कट का जो फ्लिप है ज्यादातर क्रेडिट और इन्वेस्टमेंट साइकिल में रिवाइवल के लिए बहुत ही जरूरत था, और कैपिटल जो है इंडिया में काफी एक्सपेंसिव है अभी, और इंडियन मैन्युफैक्चरिंग जो है ग्लोबली आर कम्पीटिंग विद ग्लोबल कैपिटल वेरी चीप. सो इन ऑर्डर टू गिव अ फिलिप टू द इन्वेस्टमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग साइकिल, दैट्स बीन द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस रेट कट.
जी अच्छा बताइए कि ऐसी भी खबरें हैं कि ये पहली बार है कि ये जो फैसला है ये पूरे बोर्ड ने लिया है, ना कि सिर्फ गवर्नर ने जो कि पहले होता था, तो क्या ये इसका कोई तात्पर्य है, क्या ये रेलेवेंट है कि गवर्नर फैसला ले या बोर्ड मिलकर फैसला ले?
बिल्कुल, ये इनफैक्ट बहुत ही रेलेवेंट है. ये जो है इंस्टीट्यूशनल चेंज हुआ है इंडिया में, और इनफैक्ट अगर आप यूएस की बात करें, यूरोप या ऑस्ट्रेलिया की भी बात करें, तो सब जगह पे एक कमिटी या बोर्ड होती है जो इंटरेस्ट रेट डिटरमिन करती है. सिर्फ एक इंसान का कॉल नहीं रहता है. तो इन टू कीप इन सिंक विद द ग्लोबल प्रैक्टिसेस ऑफ डिटरमिनिंग इंटरेस्ट रेट, ये मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी फॉर्म की गई है. और इंडिया में तीन मेंबर्स जो है मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, वो है सेंट्रल बैंक से, और तीन है गवर्नमेंट नॉमिनेटेड नॉमिनीज हु आर ऑल अकेडमिशियंस. तो इसे एकदम मोर इंक्लूसिव और डेमोक्रेटिक प्रोसेस और ट्रांसपेरेंट प्रोसेस बनाया गया है. और ये आप जानना चाहेंगे कि इस बार सारे 6 मेंबर्स ने रेट कट के फॉर वोट किया था.
जी अच्छा ये बताइए कि ये जो ब्याज दरों में कटौती हुई है, इससे जो भारतीय अर्थव्यवस्था है क्या उसके बारे में कुछ संकेत मिलते हैं, या ये सिर्फ एक चीज है और इससे बिल्कुल बहुत ज्यादा निष्कर्ष नहीं निकाले जा सकते?
सो बेसिकली जो इंडियन इकोनॉमी का अभी स्थिति है, अभी से इट्स एक्सपेक्टेड टू पिक अप फ्रॉम ये क्वार्टर ऑनवर्ड. अभी मॉनसून जो है बहुत ही अच्छी गई है अक्रॉस द कंट्री, फ्यू पॉकेट्स को छोड़ के. तो एग्रीकल्चरल ग्रोथ, रूरल डिमांड, वो सारी चीजें अभी पिकअप होनी शुरू होंगी. अर्निंग्स ग्रोथ भी अभी तक थोड़ा डिसअपॉइंटिंग रहा है, लेकिन वो भी अभी एक्सपर्ट्स के मानते हैं कि अभी वो पिकअप होगा. अगर आप इंडिया को बाकी के ब्रिक्स कंट्रीज से भी कंपेयर करें तो ज्यादा बेटर पोजिशन में है. तो ये पॉलिसी स्टेटमेंट बहुत क्लियरली मेंशन करती है कि एट दिस पॉइंट इन्फ्लेशन इज वेरी वेल कंटेन्ड टू टेक दिस कॉल ऑफ अ रेट कट. लेकिन आगे जाते जाते ऐसे कुछ इन्फ्लेशनरी प्रेशर आ सकते हैं जो कि विल कॉल फॉर रीविजिट ऑफ द रेट कट साइकिल. तो लेकिन आगे जाते जाते फर्दर रेट कट भी हो सकते हैं, लेकिन टाइमिंग, बाकी डेटा जैसे क्या डेटा आती है और इन्फ्लेशन का क्या रेट होता है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का क्या रेट होता है, ये सब डेटा पे डिपेंड होता है.
जी अच्छा ये बताइए कि जो भारतीय या भारतीय मूल के लोग विदेश में रहते हैं, क्या उन पर इन ब्याज दरों में कटौती का कोई असर पड़ सकता है, खासतौर से वो लोग जो या तो रेमिटेंसेस भेजते हैं या जिनके सेविंग्स अकाउंट में पैसे हैं या जिन्होंने निवेश किया हुआ है भारत के अलग अलग क्षेत्रों में?
जैसे कि रेमिटेंसेस की बात करें तो एग्जैक्टली रेट का ज्यादा कोरिलेशन नहीं रखता है, लेकिन ओवरऑल हम एक फॉलिंग इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट में है. तो इंटरेस्ट रेट या फिक्स डिपॉजिट की बात करें या नेशनल पेंशन स्कीम की बात करें जो कि NRIs भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये सारे इंटरेस्ट रेट नीचे आना शुरू हो गए हैं. और एक और वे टू लुक एट इट इज दैट एनआरआई के पास ज्यादा ऑप्शन इन्वेस्ट करने का है नहीं ग्लोबली, क्योंकि सारे वर्ल्ड ओवर देयर आर लो इंटरेस्ट रेट, नेगेटिव भी है कई जगहों पे. तो इंडिया इज मच बेटर ऑफ फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव. और इस वजह से हम बहुत सारा इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं अलग अलग सेक्टर में इंडिया में आते हुए, ह्यूज अमाउंट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स कमिंग इन. तो जो इम्पैक्ट एनआरआई से है वो एग्जैक्ट कोरिलेशन नहीं रखता है, लेकिन उनके लिए ज्यादा दूसरे ऑप्शन नहीं है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो इंडिया में उनको सबसे बेहतर रिटर्न मिल पाएंगे.
जी अच्छा, एक आखिरी सवाल जाते जाते अवनी आपसे, कि वर्ल्ड बैंक ने शायद इस तरह का कुछ कहा है कि भारत की जो आर्थिक विकास दर है वो इस साल भी करीब 7.7% रह सकती है. तो क्या आपको लगता है कि जो एक मॉनसून काफी ठीक रहा है इस साल और जो ये ब्याज दर में कटौती होगी, इससे विकास दर हो सकता है 8% तक पहुंचे या उसको पार कर ले?
तो देखिए, IMF ने है जो फोरकास्ट इंक्रीज किया है 7.4 से 7.6% तक. RBI ने, हमारे रिजर्व बैंक ने कहा है कि 7.7% तक जाता है, लेकिन जो हमारा गवर्नमेंट है वो तो बोल रहा है कि GDP ग्रोथ 8% तक भी जा सकता है. तो ऐसा नहीं है कि जैसे आपने बोला रेन मॉनसून फैक्टर अच्छा हुआ और वो सोली रिस्पॉन्सिबल होगा ग्रोथ रेट को 8% से ऊपर लाने में. लेकिन जो सेवरल इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिए हुए हैं, वेदर इट्स ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, क्लीनिंग अप ऑफ बैंक बैलेंस शीट, और उसको अभी ये रेट कट ऐड करे उसमें, तो ये सारे फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन जो है वो ऐसे सर्टनली बढ़ावा देता है कि हम इंडिया को ग्रोथ रेट अच्छा देखने को मिलेगा गोइंग फॉरवर्ड. वी विल सी अ गुड ग्रोथ रेट. सो दैट्स रियली व्हाट द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज फैक्टर्स इम्प्लाई.
अवनी, हमें पूरी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया.
Thank you.